तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामेयं ददाति सर्वभक्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी रममाने हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आप सबका इस्कॉन फोरम पंजाबी बाग के इस वीकली कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप जगह पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हम सब लोग इन भक्तों का जो फर्स्ट टाइम आए हैं जोर से हरि बोल करके स्वागत करेंगे। हरि हरि हरि। तो आज का हमने जो टॉपिक लिया है जो सामने आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ डिटीज। तो आज एक स्पेशल डे है, तभी हमने टॉपिक चूज किया है। वो स्पेशल डे क्या है आप लोगों को लग चलिए बाद में। डॉल्स और डीडीज, देखिए हम सब ने अपने बचपन से गुजर चुके हैं, अपने चाइल्डहुड से गुजर चुके हैं। तो हम सब देखते हैं बच्चों को, बच्चे खेलते हैं, किससे खेलते हैं? डॉल्स से, टॉयज से बच्चे खेलते हैं, है ना। तो अक्सर आजकल तो काफी मॉडर्न जेट एज में अच्छे अच्छे डॉल्स और अच्छे अच्छे टॉयज आ रहे हैं, उनके नाम भी होते हैं बार्बी डॉल और बार्बी डॉल, सुपरमैन, फैंटम, स्पाइडरमैन, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, तरह तरह के डॉल्स हैं और बच्चे लोग उससे खेलते हैं। और आपको मालूम होगा दिल्ली में एक आईटीओ के पास एक म्यूजियम है, डॉल्स म्यूजियम, देखा आपने? अक्सर बच्चों को जो स्कूल में होते हैं कितने खेल ले जाते हैं, तरह तरह के डॉल्स हैं, अलग अलग शेप साइजेस हाइट्स के। और हमने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं बड़े अटैच होते हैं डॉल से, किसी को बर्थडे गिफ्ट देना हो बच्चे को, डॉल में बड़ा खुश हो जाता है। कैसे खेलते हैं उसे आपने देखा? जब बच्चों को ध्यान से जब उसके साथ बातचीत करते हैं ना, छोटा बच्चा डॉल को ऐसे ट्रीट करते, वो उसका बच्चा, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं करेगा, उसके साथ चॉकलेट खाएगा, ये भी चॉकलेट है ना, फिर उसके साथ सोएंगे, मेरे साथ सोएगा, अगर कोई उसको डॉल को छीनेगा तो बच्चे रोएंगे, तो सारे ही तरह वो खेल खेलते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसके साथ खाते हैं, तरह तरह उससे बातें करते हैं, इतना अटैचमेंट। लेकिन देखते हैं धीरे 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 जब हम बड़े होते हैं, हमारा ये अटैचमेंट डॉल्स की तरफ उतना ही रहता है क्या? ये टॉयज, ये डॉल्स, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, बार्बी डॉल से रहता क्या? क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता
अटैचमेंट?
जीतेगा। क्या कारण है कि हम सिर्फ जैसे बड़े होते हैं तो हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाता है इनसे? क्यों यूजलेस है? हाँ, कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, हम उसे बातचीत करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो धीरे धीरे मालूम चलता है कि सब फिक्टिशियस है, ये सब काल्पनिक है। कोई बार्बी नाम की डॉल नहीं है, कोई मिक्की माउस नहीं है, कोई डोनाल्ड डक नहीं है, कोई स्पाइडरमैन नहीं है। आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, किसी भी प्लेनेट में चले जाइए, आपको वहां पे ऐसी कोई डक नहीं मिलेगी जो इंग्लिश में बातें करेगी आपके साथ, ऐसे ऐसे डक होगी जो मुंह लाएगी अपना, कोई मिक्की माउस, कोई चूहा ऐसे नहीं घूमेगा आपके साथ सर, होगा कोई ऐसा? कोई स्पाइडरमैन आपको मिलेगा? जेम्स बॉन्ड आपको मिलेगा कोई? ये सब फिक्टिशियस है, ये सब काल्पनिक है, कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक कल्पना की हुई और कल्पना करके हम अपना मन बहलाने के लिए सब बच्चों के लिए होता है। जब बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा समझदार होता है, बोलता है कोई रिस्पॉन्ड तो कर नहीं रहा, तो मान करता है नहीं नहीं ये सब काल्पनिक है, सिर्फ बेकार की चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा व्यक्ति और बड़ा होता है तो माँ बाप उसको बोलते हैं चलो बेटे हमारे साथ मंदिर में चलो, जबरदस्ती मंदिर ले जाते हैं, बोलते हैं देखो सामने ये भगवान जी है, जय करो, जबरदस्ती से जय करवाते हैं, सब जय करना शुरू कर देते हैं, उसको अंदर इतना उसको फील कर देते हैं, जैसे वो देखेगा पहुंच गए जय करो, जय करते हैं, देखो कितना अच्छा बच्चा है, तो बेचारा जय भी करता है, धीरे मंदिर भी आना शुरू होता है माँ बाप के प्रेशर से, फिर धीरे और बड़ा होता है, बेटे मंगलवार को मंदिर जुड़ जाएगा, अच्छा चला जाएगा, वहां पर देखता है कि पुजारी जी ले रहे हैं, तो उनकी से उनके मुंह पर चिपका दिया हनुमान जी ने, तो बेचारा करता रहता है, कभी मुंह में चिपका रहे, कभी नाक के अंदर घुसा रहे हैं, और चुपचाप बैठे हुए हैं, तो जो थोड़ा बहुत बुद्धिमान होता है कहते क्या है ये, आप सोचो आपको जबर से पकड़ लिया जाए और मुंह आपका बंद और मुंह पर बूंदी चिपका दी जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? चलो मुंह में चिपका दिया, कुछ अगर खा लूंगा कोई नाक के अंदर घुसा दें तो अच्छा लगेगा? कोई मतलब है ही नहीं, कुछ भी कर लो उनके साथ, खड़े हुए मुंह में घुसा दिया, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सोचेगा क्या है? हरि बोल, प्लीज डोंट थिंक व्हाट इज दिस, कि हम बूंदी से चिपका रहे हैं, कभी यहां लगा रहे हैं, कभी वहां लगा रहे हैं, इनको कुछ होता नहीं क्या? तो सोचेगा कि जैसे मैं बचपन में डॉल्स के साथ खेला था, लगता ये भी डॉल ही है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं इतने सालों से आ रहा हूं, मैं इसके अभी झुकता हूं, नमस्कार करता हूं, कभी इसने बोला हेलो हाउ आर यू? आप किसी व्यक्ति से रोज बात करेंगे, रोज इसको आप नमस्कार करेंगे, वास्तव में आप रिप्लाई में नमस्कार करेगा ना, और एक बार ही हुआ, दो बार ही हुआ, कई सालों साल उसको ऐसे नमस्कार किए जा रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति चुपचाप खड़ा हो गया उसे, नहीं क्या है, लगता ये भी डॉल ही है, ये ऐसे ही कोई है ही नहीं, इसमें कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, यहां मोड लगा दो, यहां बूंदी लगा दो, यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, लगता ये भी डॉल ही है। जैसे हमारी वो बार्बी डॉल थी, जैसे वो फैंटम था, जैसे वो मिक्की माउस था, सबके सब काल्पनिक थे, तो मैं ये सामने देखा हूं ये भी काल्पनिक है, इसको जो मर्जी कर लो ये रिस्पॉन्ड तो करता नहीं है, इससे कोई जवाब तो आता नहीं है, तो ये भी डॉल है। सोचते हैं ना ऐसा मन में आता कि नहीं आता? नहीं बड़ी से बोल आता है ना कुछ, लेकिन जैसे हमने उन गुड़ियाओं को, उन टॉयज को रिजेक्ट किया था, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि हम इनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि यहां पर जो हमारे स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं। क्यों स्टेक्स हाई हैं? कि हम मंदिर किस लिए आते हैं? ये कहते हैं चलो ये भगवान है, हे भगवान हमारे एग्जाम क्लियर हो जाए, इस लड़की से शादी हो जाए, यहां नौकरी लग जाए, ये बिजनेस चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बड़ी हाई स्टेक्स हैं। उस बार्बी डॉल से, मिक्की माउस से तो कोई स्टेक्स नहीं थे ना, मुझे खाली खेलना था, इनसे बड़े हाई स्टेक्स हैं, क्या पता ये मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो इतना भी हिम्मत नहीं है कि इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, तो इतना विश्वास भी नहीं है कि मान लो ये भगवान है, तो व्यक्ति बीच में फंस जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग इससे अग्री करते हैं? बीच की चेट है, कंफ्यूजन, ना तो हम इसको मान सकते हैं साक्षात भगवान है, और ना ये मान सकते हैं ये खाली डॉल्स हैं, टॉयज हैं, इनको छोड़ दो ये झूठे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आज में समाज में अक्सर 99.9% लोग कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, और जानते नहीं क्या है, मंदिर क्यों आना चाहिए, क्यों इसके सामने क्या रखा हुआ है, क्या है ये, कभी इसमें बात तो की नहीं हमारे साथ, क्या है ये। और कई तरह के लोग हैं समाज में, वो कहते हैं नहीं मंदिर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ मन के अंदर ही है, क्यों मंदिर जाए। तो ये बातें भी सुनते तो हमारा विश्वास बढ़ते हैं, आप ठीक कह रहे हो। तो आज ये सब हम चीजें चर्चा करेंगे। और जब व्यक्ति कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, ना वो उसको एक्सेप्ट कर पाता है, ना वो रिजेक्ट कर पाता है, तो बहुत फनी सिचुएशन होती है। कैसे फनी सिचुएशन होती है, आपने देखा होगा अक्सर जब व्यक्ति, आजकल क्या एक रिवाज हो गया कि कोई भी पीपल का पेड़ हो और उस पीपल के पेड़ के नीचे आप कोई भी ऐसी मूर्ति रख दीजिए, वो क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है। और देखेंगे कुछ ही समय के बाद वहां पर बड़ी बड़ी कारें आके रुक रही है, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप ड्राइविंग करते करते आपने देखा है कि यार ड्राइवर को किसी को भी देख लो फिर जरूर झुकाएगा, झुकाता नहीं झुका, चाहे एक्सीडेंट होते होते बच जाए, लेकिन इतना डर होता है कि बातचीत करते करते अचानक यहां देख रहे गाड़ी नहीं झुकाएगा सर। और फिर लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो नई गाड़ी में सबसे पहले वो किसी सो कॉल भगवान की फोटो रखते हैं, हनुमान जी की, गणेश जी की, शिव जी की, कृष्ण भगवान जी की, ऐसे फोटो चिपकाए थे। कार में एंट्री करने से पहले यूं करेंगे, कोई क्या करते हैं, कोई कहाँ हाथ लगाते हैं पता नहीं, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई यूं करेगा, कोई यूं करता है, तरह तरह के लोग तरीके करते हैं। तो यूं करके बैठ जाएंगे कार में, बस एक बारी बैठिए उसका जो मर्जी करो। कई बार देखते हैं कि शिव जी की उन्होंने फोटो लगा रखी है यहाँ पे, और आराम से गाड़ी रोक के कुछ तीन चार लोग आराम से मदिरा पान कर रहे हैं कार में, लेकिन उनको मालूम नहीं कौन है, किस कौन है, कुछ नहीं है। वो मदिरा पान करके जोर से रॉक म्यूजिक चल रही है, बॉर्न इन यूएसए, बॉर्न इन यूएसए, खूब नाच रहे हैं और रॉक म्यूजिक चल रहा है। अगर उनको मालूम चल जाए कि ये जो आपने अपने डैशबोर्ड में चिपकाए हुए शिव जी, इनको अगर गुस्सा आ गया आपकी हरकत देख के, और इन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया, तो सारा का सारा जो रॉक म्यूजिक है सब भूल जाएंगे। नहीं कुछ पता है, मतलब बस एक फोटो लगा दी है, पता नहीं शिव जी है नहीं है, कुछ भी है, बस लगानी चाहिए, करके यूं करके और शराब पी रहे और फिर रॉक म्यूजिक सुन रहे, और कई बार में शिव जी ने सुन लिया, उनको गुस्सा आ गया, तो सारा का सारा गड़बड़। बड़ी कंफ्यूज स्टेट ऑफ सत्य है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है, ये जो भगवान की मूर्तियां डॉल है या डीटी है। आप सब डीटी का मतलब समझते हैं? डीटी का अर्थ होता है अर्च विग्रह, अर्च विग्रह। विग्रह का रूप मतलब होता है संस्कृत विग्रह का शब्द, विग्रह संस्कृत का शब्द है, विग्रह का अर्थ है रूप, फॉर्म। और अर्च का मतलब ऐसी फॉर्म या ऐसा रूप जिसकी अर्चना की जा सके, जिसकी पूजा की जा सके। तो ये जो भगवान की मूर्तियां हम देख रहे हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, और वहां पे आपने राधिका रमन जी, राधा कृष्ण जी की मूर्तियां देखी, ये क्या डॉल है, डॉल मतलब गुड़िया है, खिलौने है, या ये डीटी है, यानी कि एक ऐसा रूप है, एक ऐसा फॉर्म है जिसकी पूजा की जा सके। तो ये हम आज चर्चा करेंगे। तो ये पूरे समाज में जो ये कंफ्यूजन फैला हुआ है कि लोग ना तो इसको डॉल समझ रहे हैं, ना इसको डीटी समझ रहे हैं, इसका मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या है, ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण है इनकम्प्लीट नॉलेज। किस चीज की नॉलेज? इस चीज की नॉलेज कि भगवान कौन है, हु इज गॉड एंड हु एम आई, कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये क्यों यहां पे पूजा करनी क्यों जरूरी है, अक्सर ये सब तामझाम क्यों, मंदिरों की क्यों आवश्यकता है, इस सारी नॉलेज की हमें अभाव है, इसकी इनकम्प्लीट नॉलेज होने के कारण ये सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है। लोगों को सबसे पहले यही नहीं मालूम कि भगवान कौन है,
अक्सर लोग समझते हैं भगवान का मतलब ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति, पता नहीं कोई एक ऐसी चीज है जो हमारे सारे जितनी इच्छाओं को पूरी करेगा, बस इज जस्ट आवर ऑर्डर सप्लायर। कि मेरी इच्छा हो रही है बिजनेस नहीं चल रहा, तो इसमें मैं कहीं भी जाऊं मेरा बिजनेस चलना चाहिए। जिस तरह से आप देखते हैं ना आजकल जो जबल बच्चन के शॉपकीपर होते हैं उन्होंने होम डिलीवरी की फैसिलिटी दे रखी है, तो एक हाउसवाइफ है वो घर में बैठे बैठे फोन करती है, उस चीप स्टोर को फोन किया, बोला एक किलो दाल, एक किलो नमक, एक किलो मिर्च, ये सब भिजवा देना। मुझे हाँ जी हाँ जी आ जाएगा। तो वो जो मैडम जो है मेरी ने फोन किया वहां पे, शी इज नॉट एट ऑल बॉदर, उसको कोई भी चिंता नहीं है, कोई उसका फिक्र नहीं है कि वो दुकानदार कैसा है, कौन है, काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, कुछ भी हो, उसको मेरा सामान घर में भेजना चाहिए। और अगर उस दुकानदार की सर्विस ठीक नहीं है तो इस दुकानदार को मैं चेंज करके दूसरे दुकानदार के पास चले जाऊंगा। उसी ढंग से आज पूरे समाज में क्या है, भगवान का अर्थ है ऐसा कोई चीज जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे। तो बोलते हैं कहां पे जाना चाहिए, बोले वहां चले जाओ, वहां सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहां चले गए, वहां पे जो भी करना कर लिया, इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहीं और चले गए। आज समाज में इतनी बुरी हालत है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसे बोला गया ना कि गधे को नमस्कार करो, गधे को भी नमस्कार कर लेगा। कुछ भी आप बोल दो टोट का कि आप ऐसा करो, गधे का जो मूत्र होता है उसको लो और उसकी चार सेट जल रोज पिया करो, आदमी वो पीने को तैयार हो जाएगा। लेकिन उसको आप गारंटी दे दो कि ऐसा करने से इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसको कुछ लाइव केसेस दिखा दोगे, ऐसे व्यक्ति ने ऐसे किया था, एक महीना इसने गधे के जो मूत्र को पिया था, देखो आज कितना अमीर हो गया है। तो व्यक्ति वो करने को तैयार हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं सोचेगा कि इसका क्या लॉजिक है, वो कहेगा नहीं इसमें कोई बात है, ये कोई टोटका है, कुछ करना चाहिए। तो भगवान का मतलब है जस्ट ऑर्डर सप्लायर, कि वो हमारे इच्छाओं की पूर्ति करेगा। कहीं भगवान ऐसे नहीं है, भगवान इज जस्ट नॉट लाइक एन ऑर्डर सप्लायर। भगवान हमारे खाली ऑर्डर सप्लायर नहीं है। तो भगवान के बारे में कैसे जाने, भगवान कौन है, इसके बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट नॉलेज अबाउट गॉड। भगवान के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वेदों से। भगवान के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्रों से, क्योंकि तो शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है। तो शास्त्रों से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो शास्त्रों से मालूम चलता है कि भगवान केवल हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। भगवान की जो मूल परिभाषा है, मूल परिभाषा भगवान की है जन्मादि अस्यतः, यानी कि जो सब कारणों के कारण है, जिनसे हर चीज उत्पन्न हुई है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। भगवान ये सब चीजों के कारण है लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। सरल परिभाषा में गॉड, जी ओ डी गॉड का अर्थ है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी जो कि रचना करता है, पालन करता है, वो फिर संहार करता है। ये है भगवान की सरल सी परिभाषा कि वन हु क्रिएट्स मेंटेन्स एंड एनिहिलेट्स, रचना करेगा, पालन करेगा और संहार करेगा। ये भगवान की सरल परिभाषा है। अब अगर कोई रचना कर रहा है, पालन कर रहा है, संहार कर रहा है तो वो कौन होगा? देखिए आप सबने पेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पेन से आप लिखते हैं, पेन की किसी ने रचना की होगी, ठीक है ना, कैसे किसने की होगी रचना, मतलब कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि कहीं अचानक ऐसे ही बीच में से पेन ऐसे टपक पड़ा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई होगी, उसका पेन बनाए होंगे, किसी एक व्यक्ति का हाथ होगा ना। कोई भी आप छोटी से छोटी चीज ले लो, एक पिन भी ले लो, एक बटन भी ले लो, उसकी अगर रचना किसी ने की है तो उसके पीछे कोई व्यक्ति होता है। इसी ढंग से इस पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की जब किसी ने रचना की है तो किसने रचना की होगी, अपने आप होगी वो रचना की। अक्सर लोग, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके के साथ पूरी सृष्टि हो गई। ऐसा हो सकता है क्या कि बहुत बड़ा धमाका किया और इस धमाके से शहर बन गए, गांव बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, पहाड़, पर्वत, नदियां, बगीचे, पेड़ पौधे, सब पशु पक्षी एक धमाके से उत्पन्न हो गए। हो सकता है अगर ऐसा हो जाए तो टेररिस्ट को बहुत ज्यादा पैसे देने चाहिए, उनको बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करो, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करते ही कुछ क्रिएशन हो जाएगी। जैसे बॉम्बे में पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ऐसे कोई 10 साल पहले, तो वहां बॉम्ब ब्लास्ट ऐसा नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट करते ही नए नए फायर स्टार होटल्स खड़े हो गए, नए नए बिल्डिंग्स बन गई। नहीं, ब्लास्ट से डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लास्ट से कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि ये इस पूरी सृष्टि की रचना बिग बैंग से हुई। सृष्टि जैसे देखिए, छोटी से छोटी वस्तु की रचना के लिए एक व्यक्ति का हाथ चाहिए, तो इस पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए भी एक व्यक्ति का हाथ होना चाहिए। यानी कि भगवान निश्चित रूप से कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, जो रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो व्यक्ति कौन है, कौन है वो व्यक्ति जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, इसको पालन कर और संहार कर रहा है, कौन है, कहां से हमें इसका उत्तर मिलेगा, कहां से मिलेगा, शास्त्रों से। कोई भी व्यक्ति अगर कहेगा कि मैं भगवान हूं, आप उसको मानेंगे क्या, मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। आजकल आपको मालूम है मार्केट में काफी फैशन है भगवान बनने का। अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसने पढ़ा लिखा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो सबसे अच्छा प्रोफेशन है भगवान बन जाओ। सच्ची में बड़ा आसान है भगवान बनना, आपको थोड़ा बहुत लेक्चर देना आना चाहिए, इसके बाद आराम से और कुछ अपने जो और अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको इकट्ठा कर लो, आप सब आपस में एग्री कर लो कि सबसे पहले मैं भगवान बनता हूँ, कुछ महीने बाद तुम बन जाना, तुम मेरे कुंभ में अलग अलग जगह जाकर फैल जाओ। बड़ा आसान है भगवान बनना, पहले आप कुछ सोशल वर्क करो, सोशल वर्क करते करते फिर आप भागवत कथा शुरू कर दो, फिर आप धीरे धीरे गुरु बन जाओ, और फिर धीरे धीरे अपने आप को डिक्लेयर कर दो कि मैं भगवान हूँ और मैं किस लिए आया हूँ, तुम सबको भगवान बनाने आया हूँ। तो जैसे आप बोलेंगे अरे मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, अरे वाह क्या बात है। तो ये इतना सस्ता नहीं है, भगवान कोई भी नहीं बन सकता। भगवान कौन है ये हमें शास्त्र बताया गया है। तो ये शास्त्र बताया जाता है विष्णु पुराण में, पराशर मुनि जी ने स्पष्ट बताया है कि कौन भगवान है। उन्होंने बताया है ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशाश्री ज्ञान वैराग्य शन भगम इति गणा, कि ऐसा एक व्यक्ति ऐश्वर्य समग्रस्य, जिसमें ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धनवान है, सारा का सारा धन उसी का है, ऐसा व्यक्ति जो सारा का सारा धन जिसका है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य, जो सबसे अधिक बलवान है, जो सबसे अधिक सुंदर है, जो सबसे अधिक ज्ञानवान है, जो सबसे अधिक यशवान है और जो सबसे अधिक वैरागी है, वो है भगवान। भगवान शब्द दो अर्थ शब्दों से बना है, भग और वान। भग का मतलब क्या है, ऐश्वर्य, और वान का मतलब जिसके पास ऐश्वर्य हो। देखिए आप किसी ऐश्वर्य का मतलब समझते हैं, ऐश्वर्य का मतलब वो चीज जिससे आप दूसरों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। जैसे कि इस वर्ल्ड में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी वीआईपीज हैं, उनके पास कोई ना कोई ऐश्वर्य है। हम उस व्यक्ति को वीआईपी बोलते हैं या वो बहुत धनवान हो, या वो बहुत नॉलेजेबल हो, या वो बहुत सुंदर हो, या बहुत बड़ा वैरागी हो, सन्यासी हो, या बहुत फेमस हो, यशवान हो, या बहुत अमीर हो, रिच हो। तो ऐसे जो छह गुण किसी एक व्यक्ति में, कुछ भी थोड़ा सा भी गुण है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सुंदर हो जाए तो वो फेमस हो जाता है, वो बड़ा दूसरे लोगों को प्रति आकर्षित करता है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अमीर हो जाए वो लोगों को प्रति आकर्षित करता है। आप सब देखते होंगे जब हमारी जेब गर्म होती है तो हमारे आसपास लोग घूमते हैं, जब जेब खाली होती है तो कोई साथ में नहीं रहता, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति सुंदर होता है सबको प्रति आकर्षित करता है, जो व्यक्ति इतना सुंदर नहीं है उसका कोई दोस्त नहीं होता, और जो व्यक्ति फेमस होता है उसके पीछे लोग भागते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तरह तरह की चीजों के लिए। जो कोई व्यक्ति और उसका फेम कम खत्म होता है तो उसकी आपको चिंता भी नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति में कुछ समय के लिए भी अगर थोड़ा सा ऐश्वर्य हो उसमें थोड़ा सा धन हो जाए, थोड़ा सा यश हो जाए, थोड़ा सी सुंदरता हो जाए, थोड़ा सा बल हो या थोड़ा सा ज्ञान हो या थोड़ा सा भी वैराग्य हो, इन चीज छह ऐश्वर्यों में से कोई एक चीज भी बहुत कम मात्रा में हो और बहुत कम समय के लिए हो तो वो बड़ा आकर्षक बन जाता है। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे छह के छह ऐश्वर्य असीमित मात्रा में और असीमित समय के लिए हो तो कैसे बन जाएगा? सर्वाकर्षक। जब एक ऐश्वर्य कम मात्रा में और कम समय के लिए व्यक्ति को आकर्षक बना सकता है तो छह के छह ऐश्वर्य असीमित मात्रा में असीमित संख्या में उस व्यक्ति को बना देते हैं सर्व आकर्षक। और सर्व आकर्षक को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृष्ण। आकर्षति इति कृष्ण। तो कृष्ण का अर्थ है जो सबको अपने प्रति आकर्षित करे। तो कौन हुआ भगवान? भगवान श्री कृष्ण है, ये शास्त्रों का निर्णय है। अब भगवान श्री कृष्ण है तो मैं कौन हूँ? मेरा भगवान से क्या संबंध है? तो भगवान गीता में इसके बारे में बताते हैं, ममैव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। कि सारे के सारे जो जीव हैं ये सब के सब मेरे अंश हैं, यानी हम सब भगवान के अंश हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे माता पिता कहते हैं ना कि ये बच्चा मेरा अंश है, तो अगर भगवान कह रहे कि आप सब मेरे अंश हो, इसका क्या अर्थ हुआ?
वो हमारे
हाँ जरूर हमारे पिता हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, कि जितनी की जितनी योनियां हैं उन सबका मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, चाहे वो पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, जलचर हो, किसी भी कोई योनि का जो जीव है वो सबके पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और हम सब अगर भगवान के अंश हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? एक बेटे का क्या कर्तव्य है? पिता के साथ रहे, पिता की सेवा करें। तो हम सबका यही कर्तव्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जब वो कलयुग में आते हैं तो बताते हैं जीवन स्वरूप हो गए कृष्ण नित्य दास। कि हमारा स्वरूप क्या है? कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हम सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब भगवान है बिल्कुल आध्यात्मिक और हम हैं इस भौतिक जगत में पड़े हुए। इस जो जगत जो आप कह रहे हैं, आपको मालूम है कौन सा जगत है? भगवान की दो तरह की शक्तियां, एक है भौतिक शक्ति और एक है आध्यात्मिक शक्ति। ये जो पूरा आपको सृष्टि दिखाई दी जा रही है इसको बोली जाती है भौतिक सृष्टि। और इससे परे भी एक जगत है और वो जगत है आध्यात्मिक जगत। वो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत एक रियलिटी है, आध्यात्मिक जगत कोई कल्पना का विषय नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड डज एग्जिस्ट। आध्यात्मिक जगत की रियलिटी है और यह भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है जहां भगवान श्री कृष्ण है, जो हमारा असली घर है। तो हम सबका जी जो मन हर जीव का एक कर्तव्य है जो भगवान के धाम वापस जाए, अपने अपने घर में वापस जाए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें क्लियर करना पड़ेगा हमें भगवान की सेवा। अब हम हैं इस भौतिक जगत में और भगवान है आध्यात्मिक जगत में, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? जिस तरह से आप समझ लीजिए, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो क्या प्राइम मिनिस्टर से कोई भी व्यक्ति मिल सकता है? इसके कुछ उसकी योग्यता होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान को साक्षात देखें और भगवान के साथ बैठे, उनसे बातचीत करें, तो उसके लिए हमारी कुछ योग्यता चाहिए। वो योग्यता तब आएगी जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेंगे। अभी हम इस भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत में हम दूषित अवस्था में हैं, तो हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो शुद्ध करने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस भगवान ने अपने शास्त्रों में दी है। तो भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि क्योंकि हम भौतिक जगत में यहाँ दूषित अवस्था में हैं और भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो इसलिए भगवान हम पे कृपा करते हैं कि हम उनकी सेवा कर सके। तो हमें ये फैसिलिटी देने के लिए, ये सब सुविधाएं देने के लिए हम भगवान की सेवा कर सके, भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं किसके रूप में? अर्च विग्रह के रूप में। ये आपको ये सामने मूर्तियां दिखाई दे रही है, ये साधारण मूर्तियां नहीं है, ये कहलाते हैं भगवान की अर्च विग्रह। ये भगवान का एक अवतार है। भगवान अध्यात्म जगत में है और अध्यात्म जगत में रहते हुए भगवान इस अर्च विग्रह में भी है। अर्च विग्रह का अर्थ होता है एक ऐसा रूप जिसकी हम अर्चना कर सके। और ये जो भगवान के हमने विग्रह बनाए हुए हैं ये कोई कल्पना का विषय नहीं है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है कि कृष्ण जी के हाथ में मुरली पकड़ा दी या कुछ भी कर दिया, नहीं, ये पूरा शास्त्रों के अनुसार है। यानी कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। तो आप पूछ सकते हैं क्या सबूत है इसका, क्या प्रूफ ऐसा है कि भगवान ऐसे खड़े होते हैं मुरली के साथ, उनके सिर पर मोर पंख है, नहीं तो प्रूफ होना चाहिए ना, तो किसी कल्पना का विषय है क्या, क्या प्रूफ है? आप सबने कोई महात्मा गांधी के दर्शन किए? नहीं किए। अगर किसी महात्मा गांधी की फोटो को देखते हैं तो आप कह देते हैं ये महात्मा गांधी है, कैसे कहते हैं, क्यों मानते हो कि ये महात्मा गांधी है? किसने बताया? जिन लोगों ने देखा था महात्मा गांधी को, उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ऐसे दिखते हैं। उसी ढंग से भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का कैसा रूप है, हमें वो व्यक्ति बताएंगे जिन्होंने भगवान को वास्तव में देखा है। तो भगवान को वास्तव में किसने देखा है? इस पूरे सृष्टि में सबसे पहले किस जीव की सृष्टि हुई थी? ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो बड़े कंफ्यूज थे कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई। तब उनको दो शब्द सुनाई दिए, त प त, और उन्होंने तपस्या की। जब तपस्या की तो फिर भगवान ने उनके अपने दर्शन दिए, और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के भी दर्शन किए और भगवान के लोक के भी दर्शन किए जहां भगवान रहते हैं। और फिर उन्होंने प्रार्थनाओं की, ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, उन्होंने कई प्रार्थनाएं की और वो प्रार्थनाएं एक ग्रंथ है जो कहता है ब्रह्म संहिता। उस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वेणुम कमणंतम अरविंदलाय ताक्षम बहर वत्सम असितामुदम सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। कि कैसे है भगवान वेणुम कमणंतम अरविंदलाय ताक्षम, उनके हाथ में क्या है, वेणु। अरविंदलाय ताक्षम, अरविंद का मतलब होता है कमल, अक्ष का मतलब आंखें, यानी उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान है। वेणुम कमणंतम अरविंदलाय ताक्षम बहर वत्सम, बहर का मतलब होता है मोर का पंख, उन्होंने मोर का पंख लगाया होता है। बहर वत्सम असिताम्बुदम सुंदरांगम, और उनका रंग कैसा है, असिताम्बुदम जैसे नीले बादल की तरह सुंदरांगम, बहुत सुंदर उनके अंग है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन, कंदर्प होते हैं कामदेव, कंदर्प कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेवों की जो सुंदरता है उनकी सुंदरता इस सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाती है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन गोविंद माधि पुरुषम तमाम भजामि, ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ब्रह्मा जी बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, उनके हाथ में वेणु है, वो मोर का पंख लगाते हैं। फिर आगे कई श्लोकों में बताते हैं कि वो त्रिभंग रूप में है। इस तरह से ब्रह्मा जी का डिटेल्स के डिस्क्रिप्शन होते कई श्लोकों में। तो इसलिए उन सब डिस्क्रिप्शन को पढ़कर हम लोग जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान का विग्रह बनाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जब भगवान का विग्रह बनाया जाता है तो शास्त्रों के अनुसार उस विग्रह की अर्चना की जाती है, उसकी आरती की जाती है, उसका श्रृंगार किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। तो फिर ये केवल मूर्ति नहीं रहते, ये एक विग्रह है, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे शिला प्रभा उदाहरण देते थे कि जो विग्रह है ये पोस्ट बॉक्स की तरह है। अगर समझ लो आपको यहाँ से चिट्ठी भेजनी है बॉम्बे में, तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपने बॉम्बे में चिट्ठी भेजनी है तो आप दिल्ली के जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ में जाकर चिट्ठी लेके आए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पोस्ट बॉक्स में डाल दें, जो ऑथराइज पोस्ट बॉक्स है पोस्टल डिपार्टमेंट का उसमें हम चिट्ठी डाल दें। इसी ढंग से अगर हम भगवान से बातचीत करना चाहते हैं, भगवान को कुछ देना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हम सीधा भगवान के धाम में जाएं, आध्यात्मिक जगत में जाएं और दें, वो हम कर नहीं सकते। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे लिए इजी तरीका, कि पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल दें। तो ये क्या है, पोस्ट बॉक्स, यहाँ पे आप कुछ भी देंगे वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, भगवान के धाम में। जैसे आपने पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाली तो चुपचाप बॉम्बे पहुंच जाएगी, क्योंकि शर्त क्या होनी चाहिए, पोस्ट बॉक्स ऑथराइज होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी लाल डब्बे में चिट्ठी डाल दो, हर लाल डब्बा पोस्ट बॉक्स नहीं होता। इसी वजह से हर जो मूर्ति आपको मंदिर में दिखाई दे रही है वो अर्च विग्रह नहीं है। जिस मूर्ति की स्थापना शास्त्रों के अनुसार नहीं हुई तो वो अर्च विग्रह नहीं है, वो केवल डॉल ही है। लेकिन जिसकी स्थापना शास्त्रों के अनुसार हुई है और जिसकी पूजा भी शास्त्रों के अनुसार हो रही है वो है अर्च विग्रह, वो है ऑथराइज पोस्ट बॉक्स। क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, वो कुछ भी अपनी कल्पना कर लेते हैं। जैसे इंदौर में कुछ समय पहले केस हो गया था एक टेलर के ऊपर, उसने क्या किया, उसने जीन्स बनाना शुरू किया। उसने बड़ा हनुमान जी का भक्त था, उसने बड़ा कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी जीन्स की पब्लिसिटी हो, तो उसने इश्तिहार निकाल दिया और उस इतिहास में उसने दिखाया कि हनुमान जी ने जीन्स डाली हुई है। उसने बोला हनुमान जी ने जीन्स डाले, खूब अपने उससे पब्लिसिटी कर दी। तो जब लोगों ने देखा अरे हनुमान जी ने जीन्स डाली हुई है, तो बैंक लोग थे जिनके सेंटीमेंट्स को धक्का लगा, तो कोर्ट में केस कर दिया गया, फिर उसको ये पब्लिसिटी अपने वापस लेनी पड़े। तो लोग कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी फोटो बना लेते हैं, किसी पत्थर के ऊपर कुछ भी एंटी उल्टा सीधा कर, बोलिए भगवान है, उनकी पूजा करनी शुरू कर दो। नहीं, उससे नहीं होगा। भगवान की स्थापना शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। फिर ये पोस्ट बॉक्स का काम करते हैं, भगवान कहते हैं कहने गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ते नहित अश्नामि प्रेतात्मना। पत्र फूल और पानी कोई भी मुझे देगा यदि प्रेम से देगा तो उसको मैं खाता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं खाता हूँ। तो इसलिए हम यहाँ इसको भोग लगाते हैं, दिन में 6 बारी मंदिरों में भोग लगता है। भगवान की अगर थाली रखी जाती है और कुछ समय में थाली हटा ली जाती है, तो जब थाली हटाते हैं थाली भारी होती है खाली होती है, भगवान ने क्या खाया, अक्सर लोग ये कहते हैं जो लोग भगवान को मानते नहीं कि भगवान आकार है, उनका कोई आकार है, उनका थाली रखी है आपने भोजन रखा है अगर खाया होता तो खाली होना चाहिए था ना, इसलिए भगवान ने कुछ खाया ही नहीं। ऐसा नहीं, देखिए भगवान अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हैं, आत्मा राम है उनका नाम, उनको कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, उनको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, ये सब हमें सुविधाएं दे रहे हैं ताकि हम भगवान की सेवा करके अपने आप को शुद्ध कर सके। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं कि वो मेरी आरती करे, कोई मेरे प्रणाम करे, कोई मेरी फूल डाले, श्रृंगार करे, भोजन खिलाए, नहीं, वो पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट है। तो ये सब सुविधाएं हमें इसलिए दे रही है कि हम सब इसका करेंगे तो हमारा भला होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। इसलिए जब भगवान जब हम थाली रखते हैं तो भगवान इसलिए नहीं खाते, अगर खा लिया तो बेचारे कभी दोबारा रखेंगे एक बार अब संभल अब रख लेंगे, भले ही तो बहुत ज्यादा खा जाते हैं, हमारे परिवार का मुश्किल से करते एक और कहां से आ गए, रोज खाएंगे। तो इसलिए भगवान बहुत दयालु है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने नेत्रों से उसको देखते हैं और उसके अंदर रस डाल देते हैं, तभी आप जब प्रसाद और साधारण भोजन में बहुत अंतर होता है। प्रसाद को साधारण भोजन नहीं है, जब आप प्रसाद खाते हैं प्रसाद से हमारा पूरा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और प्रसाद का एक अलग ही टेस्ट है, आप इसको सब रियलाइज कर रहे हो। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा और नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो जो अर्च विग्रह है ये भगवान और भगवान के अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो कि अर्च विग्रह के शास्त्रों के अनुसार सेवा करते हैं उनके साथ ये अर्च विग्रह बातें करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमारे शास्त्र में बहुत से उदाहरण है, बहुत से ऐसे उदाहरण जैसे अर्च विग्रह ने भक्तों से बातचीत की है, और आज वो स्पेशल दिन है। आपको मालूम है आज सबने दर्शन किए थे वहां पे राधिका रमन जी के, कितने लोगों ने दर्शन किए थे, तो आपको क्या स्पेशल लगा आज के दर्शन में, जो फर्स्ट टाइम आए वो बताएं, कुछ अजीब सा लगा ना, ऐसा लगा कोई पता नहीं कुछ भगवान कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया होगा, लगा ना आपको ऐसा कुछ, फिर क्यों लगाया होगा, यही तो कारण होगा ना, कल तक तो नहीं लगा तो आज लगा दिया, क्यों लगाया, क्या है चिंतन यात्रा, थोड़ा सा आपको बताएंगे, समय कम है थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। इससे मालूम चलता है कि जो भगवान के अर्च विग्रह है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो आज से कोई 700-750 साल पहले भगवान के बहुत शुद्ध भक्त जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी जी के गुरु थे। तो ईश्वरपुरी कौन थे, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान
भगवान श्री कृष्ण जो कलयुग में आते हैं हमें सिखाने के लिए भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो माधवेन्द्रपुरी बहुत भगवान के शुभ भक्त थे और माधवेन्द्रपुरी वृंदावन घूमते घूमते गिरिराज गोवर्धन के पास पहुंचे। उन्होंने वहां गोवर्धन की परिक्रमा की और गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद वहां एक कुंड है जिसका नाम है गोविंद कुंड। वहां उन्होंने गोविंद कुंड में स्नान किया और वृक्ष पर जाकर बैठ गए। संध्या का समय हो रहा था और ये माधवेन्द्रपुरी ऐसे संत थे किसी से भीख भी नहीं मांगते थे खाने के लिए, कोई आके देगा तो चुपचाप खा लेंगे। तभी वहां पे एक ग्वाला आया, बाल बालों के लिए ग्वाला आया, उसने माधवेन्द्रपुरी जी को एक दूध का मटका दिया, बोले इसको आप पी लो। बोले अरे आपको कैसे मन चला मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको कैसे मन चला कि मुझे भूख लगी है। उन्होंने बोला कि हमारे गांव में कोई व्रत नहीं रखता, हमारे गांव में कोई भी आता है उसको भूखा नहीं होने देते, या तो वो चुपचाप मांगता है मुझे दूध पिलाता है, अगर नहीं पीता है या मांगता है उसको जबरदस्ती देते हैं। बोले आपको कैसे मन चला यहाँ बैठा हूँ। बोले कुछ स्त्रियां थी जो कुएं में पानी भर रही थी, उन्होंने देखा कि बाबा नीचे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला इसको दूध दिया। कहने लगे देखिए मेरे पास समय नहीं है, आप अगर दूध दीजिए मुझे गाय चलानी है, मैं कुछ समय ना लाते बर्तन दे जाऊंगा। तो माधवेन्द्रपुरी जी ने दूध पी लिया, लेकिन वो जो बालक था वो इतना सुंदर था और उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि माधवेन्द्रपुरी बिल्कुल स्तब्ध हो गया। हमेशा उस बालक के बारे में सोच रहे थे और बालक के बारे में सोचते सोचते उनके हृदय में बड़ा कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो रहा था। बड़े विचलित से थे, उन्होंने दूध तो पी लिया, उसकी बात देख रहे थे लड़का कब वापस आएगा, नहीं लड़का वापस ही नहीं आया बस। लेकिन उनके में सोया भी नहीं जा रहा था और बस वो भगवान का हरि नाम दे रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। लेकिन वो बालक वापस नहीं आया और फिर रात्रि पूरी निकल गई। जब रात्रि पूरी निकल गई सुबह होने लगी थी तो उनको थोड़ी सी झपकी लग गई। जब झपकी लगी तो उनको एक सपना आया और उस सपने में देखा कि वही बालक जो बालक दूध लेके आया था माधवेन्द्रपुरी के पास आता है और बोलते हैं माधवेन्द्रपुरी चलो। वो उनका हाथ पकड़ के ले जाते हैं जंगलों में, जंगल से बड़े घने जंगलों से निकालते निकालते एक झाड़ी के पास आते हैं। बोले देखो इसके नीचे मैं दबा हुआ हूँ, आजकल मैं इसके नीचे दबा हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बारिश ठंड गर्मी सब सहनी पड़ रही है, कृपया करके मुझे इससे निकालो। कह रहे थे मैं जानता हूँ तुम बड़े शुद्ध भक्त हो और मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था, मैं चाहता था कि तुम मेरी सेवा करो। मैं तुम्हें मालूम है कौन हूँ, मैं हूँ गोपाल, मैं हूँ गोवर्धनधारी और मुझे यहाँ पे जब मेरा मंदिर था उस मंदिर पर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो पुजारी मुझे जब भी यहाँ छुपा के भाग गया, इसलिए वो वापस नहीं आया, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो माधवेन्द्रपुरी की नींद खोली, उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और सारे गांव वाले गए जंगलों से निकलते हुए एक झाड़ी तक पहुंचे, उन्होंने उसको खुदाई किया। उन्होंने खुदाई किया तो क्या देखते हैं कि वास्तव में उस जगह में एक बहुत बड़ा अर्च लिख रहा था, गोपाल जी की मूर्ति थी और उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। हमने उस मिट्टी को उठाया, उसने उसको उठाने लगी तो बहुत भारी थी, तो कई लोगों ने मिलकर उसको उठाया और फिर गोपाल जी के वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर ले गए। क्योंकि सपने में गोपाल जी ने बोला था कि मुझे मेरा मंदिर बनाना गोवर्धन जी के ऊपर, तो सबके सब उनको उठा के ले गए और फिर उन्होंने वहां पर उनके लिए मंदिर बनाया। और जब मंदिर बनाया तो पूरे गांव वाले उसमें इन्वॉल्व हो गए और सब गांव वाले अपने घर से कुछ कुछ खाने का सामान ला रहे हैं और बहुत बड़ा अन्नकूट फेस्टिवल। अन्नकूट फेस्टिवल जानते ही होते हैं, जब गोवर्धन पूजा होती है तो गोवर्धन पूजा में अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को लिए अन्नकूट उत्सव मनाया गया। तो बहुत अन्नकूट उत्सव मनाया गया और बड़े ढंग से उसका भगवान का अभिषेक हुआ, उनको वस्त्र डाले गए, सब कुछ कर दिया गया। तो इस तरह से सारे के सारे गांव मिलकर उस गोपाल जी की पूजा करने लगे। इस तरह से 2 साल बीत गए। तो 2 साल बीत गए तो फिर से माधवेन्द्रपुरी जी को सपना आया और माधवेन्द्रपुरी जी सपने फिर से वो गोपाल जी आए और गोपाल जी ने बोला कि थैंक यू वेरी मच, मैं पहले से तो बेटर, पहले से मुझे गर्मी कम लग रही है लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है। अभी क्या करो कि आप जाओ जगन्नाथपुरी और मेरे लिए वहां से आप चंदन लेके आओ और मेरे को यहाँ चंदन लगाओ, तब मुझे ठंडक महसूस होगी। माधवेन्द्रपुरी जैसे उठे क्योंकि साक्षात भगवान उनके सपने में आ रहे हैं तो मदद तो जाना ही पड़ेगा। और वो कहाँ पे इस समय, कहाँ है माधवेन्द्रपुरी इस समय, कहाँ पे गोवर्धन में, और जाना कहा है उनको, कौन सी ट्रेन पकड़नी थी उनको, उस समय कोई ट्रेन नहीं थी और उस समय कोई फ्लाइट भी नहीं थी, कोई बस नहीं थी। और मालूम है कितना डिस्टेंस है वृंदावन से जगन्नाथपुरी, 1200 किलोमीटर
पैदल गए वो, वही पैदल गए, दुखी हो गए, क्या कर दिया पता नहीं, क्या सपने बोल दिया, इतनी दूर जाना पड़ गया। जब रास्ते में गए तो बड़े आनंद में कि भगवान का मुझे आदेश मिला है, बड़े आनंद में नाश्ते खेलते एकदम कीर्तन करते हुए गए। तो जगन्नाथपुरी जाने से पहले एक जगह आती है यमुना, उड़ीसा में यमुना जगह आती है, तो वहां एक रात के लिए रुके। तो वहां पे एक मंदिर था, जो मंदिर कहता था गोपीनाथ जी का मंदिर। उस मंदिर की एक स्पेशलिटी थी कि वहां भगवान गोपीनाथ जी को बड़ा अच्छा भोग लगाया जाता था, और वहां पे जो स्पेशलिटी थी कि भोग में लगाती थी खीर, और खीर का टेस्ट होता था अमृत के समान। उस खीर का नाम होता था अमृत केली खीर।